अखंडानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्ता रमावतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम शभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गै स्तुष्टो वां सस्तनुभिर्यशेम देव इतं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ
हरि ओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। पूज्य महाराज जी कई सालों से इसी समय पधारते हैं। इस समय थोड़ी हमें नुकसान हुआ है महाराज जी, दो दिन तो 16-17 गए और 30 नवंबर को जो भागवत चालू होगी तो एक दिन यानी 3 दिन का हमें नुकसान हो रहा है महाराज जी आपकी वाणी का। तो फोन से जैसे बात हुई तो महाराज जी ने बड़ी कृपा करके अगले साल तो 1 से 15 ही दे दी कि कोई भी रुकावट ना आए और महाराज जी का पूरा हमें यह जो सत्संग प्रवचन का आनंद मिले। महाराज जी ने गए समय में ईशावास्य उपनिषद पर जो प्रवचन रखा था उसकी शुरुआत में ये उन्होंने पहला ही वाक्य ये था कि हम अपने वास्तविक रूप को नहीं जानते, गहरी नींद में कोई सुख व दुख नहीं होते। महाराज जी ने आगे भी बताया, सारा के सारा जगत, सारा का सारा जगत मिट्टी के घड़े की तरह है, वस्त्र तंतु से बना है, ऐसी अद्भुत व्याख्या से महाराज जी ने ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभ गए साल किया था, उसी को लेके आगे पूज्य महाराज जी प्रवचन धारा शुरू रखेंगे। महाराज जी अपने ट्रस्ट के, प्रेमपुरी ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है और उनका मार्गदर्शन भी हमेशा मिलता रहता है। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में आप तरफ सबकी तरफ से वंदन व माल्यार्पण करता हूं। हरिओम।
स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, ब्रह्मलीन परम गुरुदेव श्री प्रेमपुरी जी महाराज एवं सद्गुरुदेव श्री त्यागमूर्ति जी महाराज के चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम। श्रद्धा भक्तिमयी माताओं एवं सज्जनों, ऐसे तो जैसे कि प्रेमास्पद गिरीश भाई ने आपको कहा, 16 तारीख से ही इस सत्र का, स्वाध्याय प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ होना था और एक हमारे सद्गुरुदेव के चिर परिचित संत, उन्होंने एक संत सम्मेलन रखा था उज्जैनी नगरी में, कल ही उसका प्रारंभ हुआ और प्रतिवर्ष वे रखते हैं, लेकिन समय ऐसा आता था कि अक्टूबर में उनका होता था, तो उनके सम्मेलन में लगभग उपस्थित रहता ही हूं मैं प्रतिवर्ष। इस वर्ष उद्घाटन उन्होंने मेरे द्वारा ही रखा था, मना कर दिया था, लेकिन कहते आप नहीं आएंगे तो सम्मेलन भी नहीं हो होगा, इस साल करेंगे नहीं हम, तो उसके कारण यहां पर 16 तारीख से 29 तारीख तक के लिए वचनबद्ध होने पर भी गिरीश भाई को हमने सूचना दी कि ऐसा ऐसा है, यदि आप कहें तो वहां जाएं। और 15 तारीख को वेदांत कुटीर घाट कोपर का ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होना था, तो आदरणीय स्वामी जगदीशपुरी जी को भी 14 को ही कार्यक्रम का समापन करना पड़ा। ऐसे मुझे 16 को शाम को जाकर के 17 को रात में वापस आना था। 16 को एक दिन प्रारंभ करूं और फिर 17 को एक वक्ता खोजना पड़े, ये ठीक नहीं था। तो 3 दिन तक वो आदरणीय स्वामिनी चित्कलानंद जी का समय मिला, उनका भी लाभ आपको मिला। गत वर्ष प्रसिद्ध उपनिषदों में जो प्रथम ही ईशावास्योपनिषद है, इस पर हम लोगों ने यथामति विचार किया था। ईशावास्योपनिषद के 18 मंत्रों में से केवल 7 मंत्रों का विचार हुआ था, बाकी मंत्रों का विचार अवशिष्ट है। सुबह गिरीश भाई ने पूछा कि क्या लेंगे स्वामी जी, तो मैंने ये कहा कि ईशावास्योपनिषद का कुछ अवशिष्ट है, चाहे तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। गिरीश भाई ने भी कहा ठीक रहेगा, शास्त्र चिंतन करना है, सत्स्वरूप परमात्मा के साथ अपने बुद्धि को जोड़ना है। सत्संग में सत शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इत्यादि में सत शब्द से छांदोग्य उपनिषद में परमात्मा को ही कहा है, ब्रह्म को ही कहा है। और संग का अर्थ होता है संबंध, परमात्मा के साथ संग करना, ये सत्संग है। और संग शरीर से नहीं होता, बुद्धि से होता है। व्यक्ति की बुद्धि जिन पदार्थों के साथ जुड़ी है, शरीर कहीं भी हो, उसका संबंध माना जाता है उसी वस्तु के साथ है, जिस वस्तु के साथ व्यक्ति की बुद्धि जुड़ी है। यदि हमारा शरीर प्रारब्ध के अनुसार कहीं पर भी रहे, चाहे परमात्मा मुंबई में रहें, हिमालय में रहें, दिल्ली रहें, देश विदेश में रहें, लेकिन बुद्धि यदि परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, तो आप मुंबई में नहीं हैं, आप कहीं देश विदेश में नहीं हैं, लेकिन परमात्मा में हैं। गीता में भगवान ने ही कहा, यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरे में ही निवास करना चाहते हो, तो क्या करो, मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वम न संशय। हे अर्जुन, तुम यदि निरंतर मेरे साथ रहना चाहते हो, तो क्या करो कि अपने मन को मेरे में रखो। तो मन को मेरे में रखने का फल क्या होगा, तो कहते निवशिष्य सिमयेव। तो यदि तुम्हारा मन मेरे में रह गया, तो तुम मेरे में ही रहोगे, यानी मेरे साथ ही रहोगे, सत्संग ही तुम्हारा निरंतर होता रहेगा। केवल 7:30 से 8:30 तक मात्र नहीं, हमेशा का सत्संग होगा। तो भगवान को अर्जुन ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं कि यदि मन तुम्हारा मेरे में रह गया, तो तुम मेरे में ही हो। लेकिन ये मन कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है कि जैसे यहां फूलमाला रखी है, यहां से उठा ली और जहां रखना चाहे वहां हाथ से रख दी उठा करके। ऐसे हाथ से पकड़ में आने वाला तो मन है नहीं कि जिससे हम पकड़ ले और फिर आपके चरणों में लगा दें। तो भगवान ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, थोड़ा मन का स्वभाव देखो। हमारे शास्त्र मनोवैज्ञानिक पद्धति से लिखे गए हैं। कहते मन किसी की बात नहीं मानता है, वो सच्चा स्वामी निष्ठ है। आजकल के नौकरों की तरह नहीं है, सामने यदि मालिक है तो कार्य कर लिया और नहीं है तो अपना समय पास कर लिया। मन तो सच्चा स्वामी निष्ठ है, उसके उससे आपको जो कार्य कराना है उसे मत बताइए, उसके स्वामी को बताइए। आपके नौकरों से यदि आपके मित्र को कोई कार्य लेना हो तो सीधे नौकर को बता दे तो नौकर नहीं मानेगा, और आपको कह दे कि आपका नौकर हमारे पास हमारा कार्य करने के लिए 8 दिन के लिए भेज दीजिए और आप उसे आज्ञा दोगे तो उस नौकर को जाकर के वहां पर कार्य करना पड़ेगा करेगा। ऐसे ही आप मन को रखना चाहते हैं भगवान के चरणों में, और मन को आप कहें कि बस तुम्हें और कुछ नहीं करना, भगवान के चरणों में बने रहना है, तो मन आपका नौकर नहीं है, आपकी बात नहीं मानेगा। तो उसके स्वामी को कहो कि आपका सेवक जो मन है उसे क्या करो कि कुछ समय के लिए मेरी बात मानने के लिए कहो, मेरा कार्य करने के लिए कहो। तो फिर मन का स्वामी यदि मन को आदेश दे कि तुम इनकी बात मानो, इनका कार्य करो, तो वो फिर आपका कार्य करेगा। ये नीति है। तो भगवान जानते हैं कि मन को रखने मात्र से ही जहां रखोगे वहीं का संग माना जाएगा। भगवान में रखेंगे मन को तो भगवान के साथ ही हमारा संग होगा। लेकिन मन को अर्जुन ने कहा कैसे रखे, तो कहा कि मन के स्वामी को समझो। मन का स्वामी है बुद्धि। आपकी बुद्धि जो चाहती है मन वह करता है। बुद्धि मन को जो आदेश देगी वह कार्य निरंतर मन करता रहता है। और बुद्धि क्या अपने नौकर मन से क्या कार्य कराएगी, तो किसी के पास कहीं एक कार्य हो और कार्यकर्ताओं की कमी हो तो देखेगा कि अनेक कार्यों में से महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, उस कार्य को प्रथम संपन्न कराएगा और फिर वो कार्य संपन्न होने के बाद दूसरे दूसरे कार्यों में लगाएगा। ऐसे बुद्धि के पास भी मन रूपी एक सेवक है और कार्य अनेक है। तो बुद्धि के दृष्टि में जो महत्वपूर्ण कार्य होगा वो कार्य मन से कराएगी बुद्धि। तो बुद्धि में भगवान कहते हैं जब ये निर्धारण है कि कोई भी व्यक्ति, सामान्य नीति यही है कि जिस कार्य को हम महत्व दे रहे हैं वही कार्य हम अपने कार्यकर्ताओं से कराते हैं, तो आपकी बुद्धि किसको महत्व दे रही है? संसार के कार्यों को महत्व दे रही है या परमार्थ को महत्व दे रही है? तो माना जाएगा कि जिसको बुद्धि से हम महत्व दे रहे हैं हमने अपने बुद्धि का निवेश उसमें किया है। तो भगवान कहते हैं कि मन को मेरे चरणों में रखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि बुद्धि का निवेश मेरे में करना पड़ेगा। मई बुद्धिम निवेशय, तुम मन को मेरे में स्थापित करने के लिए क्या करो कि अपने बुद्धि का निवेश मेरे में करो। बुद्धि का निवेश परमात्मा में करने का अर्थ है बुद्धि में परमात्मा का महत्व बैठ जाए। जिस वस्तु का महत्व बुद्धि में है माना जाता है बुद्धि का निवेश उसी वस्तु में हुआ। तो परमात्मा का महत्व बुद्धि में बैठेगा तो बुद्धि मन से वही कार्य कराएगी जो परमात्मा निरंतर बुद्धि में स्फुरित होता रहे, ऐसा कार्य कराएगी ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धि को मेरे में निविष्ट कर दो तो मन परवश होकर के वही करेगा जो आप चाहते हैं, परमात्म चिंतन चाहते हैं, सत्संग चाहते हैं, परमात्मा का संग निरंतर चाहते हैं। तो परमात्मा का महत्व बुद्धि में बैठेगा तो मनोवैज्ञानिक तरीका यही है कि जिस बुद्धि में जिसके जिस वस्तु का महत्व है उसका मन उसी का चिंतन करता है। ये सबके अपने अनुभव की बात भी है, आप देखते हैं। तो परमात्मा का बुद्धि में महत्व बैठ जाए तो सत्संग निरंतर होता ही रहता है। परमात्मा का बुद्धि में महत्व बिठाने के लिए ही शास्त्र हैं। बुद्धि में परमात्मा हमारी बुद्धि ने अनादि काल से प्राकृत जो जगत है और प्राकृत जगत में जो रूपादि विषय हैं इन्हीं का संग करते करते इन्हीं का महत्व हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है। शास्त्र आत्मा और अनात्मा दो वस्तुओं का प्रतिपादन करता है। आत्मा का प्रतिपादन करता है, आत्मा का महत्व बुद्धि में बैठ जाए इसके लिए, और अनात्मा का प्रतिपादन करता है इसलिए कि पहले से हमारी बुद्धि में जो अनात्म वस्तुओं ने स्थान प्राप्त कर लिया है, हमारा जो अनात्म वस्तुओं में बुद्धि का निवेश हुआ है हमारी बुद्धि का, वह हट जाए, वहां से बुद्धि निवृत्त हो जाए और परमात्मा में ही प्रविष्ट हो जाए, परमात्मा में ही अभिनिविष्ट हो जाए, यही शास्त्र का उद्देश्य है। इसी और ये हो जाए संपन्न तो निरंतर सत्संग होगा परमात्मा का, तो ये तो फलभूत सत्संग है। परमात्मा में निरंतर हमारा मन लगा रहे, हमारी बुद्धि का निवेश परमात्मा में हो जाए, तो ये नियम होता है कि व्यक्ति का शरीर जहां है वहां व्यक्ति का अस्तित्व नहीं माना जाता। व्यक्ति तो चेतन है, पुरुष आत्मा जीव चेतन है ना, तो जो चेतन और जड़ का भेद इसी से किया जाता है कि चेतन को ये ज्ञात होता है कि चेतन जहां पर है उस देश को भी वो जानता है, उस काल को जानता है और वहां की विद्यमान वस्तुओं को भी जानता है, और जड़ पदार्थ को न देश का ज्ञान है, न काल का ज्ञान है, न वस्तुओं का ज्ञान है। आपको ये इस समय ज्ञात है कि हम प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन में तीसरे माले में सत्संग में बैठे हैं, देश का ज्ञान है आपको, चेतन है इसलिए, और काल का भी ज्ञान है कि इस समय प्रातः 8 बजने वाला है और आपको यहां के इस समय इस स्थान पर जो जो वस्तुएं विद्यमान है इसका भी ज्ञान है क्योंकि चेतन है। ये माइक नहीं जानता कि मुंबई में है या हरिद्वार में है और क्या समय है ये भी नहीं जानता, और कौन कौन यहां बैठा है ये भी नहीं जानता। जड़ और चेतन में यही तो अंतर होता है, आत्मा चेतन है। तो व्यक्ति का आप यहां पर शरीर से विद्यमान है इसलिए आपको यहां का ज्ञान हो रहा है, ये बात नहीं। आपका शरीर यहां बैठा रहे और मन यदि आपका घर चला जाए तो उतने समय के लिए, जितने समय के लिए आपका मन घर में है, उतने समय के लिए आपको यहां शरीर होने पर भी यहां का ज्ञान नहीं रहेगा। इसका अर्थ है कि शरीर आपका जहां है वहां आपका अस्तित्व नहीं है, आपका अस्तित्व वहां है जहां का आपको ज्ञान हो रहा है, आप चेतन है इसलिए। और आपका मन घर में है तो घर का ज्ञान होगा, उस समय सारा दृश्य घर का दिखेगा, जहां जहां जिस कमरे में मन घूम रहा है वो कमरा सब दिखेगा, वहां की वस्तुएं दिखेगी। और यहां का उस समय हम पूछेंगे कि मैंने क्या कहा, उतने समय के लिए आप कहोगे कि अन्यत्र मना अभवम ना श्रोषम, मेरा मन कहीं और गया था, आपने क्या कहा वो मैंने नहीं सुना। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का मन जहां है वहां का व्यक्ति को ज्ञान होता है, वहां व्यक्ति का अस्तित्व, जहां का ज्ञान हो रहा है वहां व्यक्ति का अस्तित्व माना जाता है। यदि हमारा मन अनात्म वस्तुओं से निकल करके आत्मा में ही यानी परमात्मा में ही निरंतर स्थित रहे तो हमें निरंतर जो आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक तापत्रय से रहित तो परमात्मा है, आत्मवस्तु है, उसी का स्फुरन होता रहेगा। और उसी का स्फुरन होगा तो हम भी मन से तापत्रय से रहित होंगे। और हम वेद से उपनिषदों से यही तो दृष्टि मिलती है, आत्मदृष्टि मिलती है, आत्मा का महत्व अधिकारी के बुद्धि में बिठा करके जो तापत्रय से रहित और देश से अपरिछिन्न यानी सर्वत्र विद्यमान और काल से अपरिछिन्न यानी किसी भी काल में जिसका अभाव नहीं है और प्रत्येक वस्तु में जो विद्यमान है, ऐसे परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव कराने के लिए ही सारे उपनिषद हैं। ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में संपूर्ण उपनिषदों का उद्देश्य बताते हुए भगवान भाष्यकार जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है। पहले उन्होंने अध्यास का ठीक से निरूपण किया। अध्यास कहते हैं भ्रांति को, जो सर्प नहीं है उसे सर्प समझना, जो चांदी नहीं है सीप है उसे चांदी समझना, ये अध्यास है। ऐसे जो आत्मा नहीं है उसे आत्मा समझने का नाम है अध्यास। अतस्मिन् तद्बुद्धि रध्यास, ये अध्यास का छोटा सा सरल लक्षण किया उन्होंने। अतस्मिन् यानी अनात्मा में जो तद्बुद्धि यानी आत्मबुद्धि है इसी का नाम अध्यास है, भ्रांति है। और भ्रांति से ही सारे दुख हो रहे हैं। आत्मा का स्वरूप तापत्रय से रहित है, आत्मा में उपनिषदों के दृष्टि में आत्मा तो परम आनंद स्वरूप है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, जो ईशावास्योपनिषद का व्याख्यान रूप है बृहदारण्यक उपनिषद, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म यानी आनंद स्वरूप है आत्मा तो। ब्रह्म आत्मा ये पानी और जल ये दोनों शब्द जैसे पर्यायवाचक है, ऐसे आत्मा और ब्रह्म ये दो शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इनका अर्थ जैसे पानी और जल ये दो शब्द अलग अलग होने पर भी अर्थ एक है, ऐसे आत्मा कहो या ब्रह्म कहो ये दोनों पर्याय हैं। और ब्रह्म को आनंद स्वरूप कहा गया है, उसमें कोई दुख नहीं है, न आध्यात्मिक ताप है, न आधिभौतिक ताप है, न आधिदैविक ताप है, तीनों तापों से रहित आत्मा है। ऐसे आत्मा का हमें आत्म रूप से अनुभव यदि हो रहा है, तब कभी भी मैं दुखी हूं, तापत्रय से संतप्त हूं, ये अनुभूति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आत्मा में ये तीन तापों में से एक भी ताप नहीं है, और यदि किसी को इन तीन तापों में से किसी भी ताप से संतप्तता की ही अनुभूति हो रही है, मैं दुखी हूं ऐसा अनुभव हो रहा है, जहां पर दुख का लेश भी न हो, ऐसा यदि मैं दुखी हूं अनुभव कर रहा हो, तो मानना पड़ेगा कि वो उसकी भ्रांति है, भ्रांति से ही दुख उसे हो रहा है। जैसे स्फटिक में लाली मां का लेश भी नहीं है, लेकिन स्फटिक के पास में यदि लाल वस्तु रखी जाए तो लोहित स्फटिक ये भ्रांति होती है। जहां पर लेश मात्र भी लालिमा न हो, वह स्फटिक पूरा का पूरा लाल भासरा हो, इसे जैसे भ्रांति कहा जाता है। पास में रखे हुए लाल फूल के कारण जो लाल नहीं है वह स्फटिक भी लाल प्रतीत हो रहा है। ऐसे ही मानना पड़ेगा कि जहां तीन तापों में से एक भी ताप का लेश न हो और वह तापत्रय से संतप्ततया अनुभव में आ रहा हो, तो जिसमें तापत्रय है उसकी सन्निधि से ही तापत्रय रहित आत्मा में तापत्रय की अनुभूति हो रही है, और ये भ्रांति है। जैसे स्फटिक में लालिमा की भ्रांति है, लोहित स्फटिक ये, ऐसे मानना पड़ेगा कि आत्मा में दुख की भ्रांति है। आत्मा दुख रूप तो नहीं है, लेकिन मैं का अर्थ ही होता है, मैं शब्द का प्रयोग ही आत्मा के लिए होता है, और हमें व्यवहार अवस्था में मैं दुखी हूं ऐसा अनुभव ऐसा एक दिन भी नहीं जाता कि दुख की अनुभूति न हो। तो प्रतिदिन दुख की अनुभूति हो रही है, मैं दुखी हूं इसी रूप में, का मतलब जो दुखी न होता हुआ दुखी के रूप में अनुभव में आ रहा है तो वो भ्रांति से या अध्यास है। और ये दुख है कहां, तो जैसे आपके गीता में आप देखते हैं कि दुख को सुख को काम को यानी इच्छा आदि को आत्मा का धर्म नहीं माना है। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में प्रतिपादन करते हुए अनात्मा को क्षेत्र कहा भगवान ने, और क्षेत्र का वर्णन करते समय भगवान ने महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम, ये कहा ये क्षेत्र है, उसमें संघातश्चेतना धृति तक वो आया, इच्छा द्वेष सुखम दुखम ये सारा का सारा क्षेत्र है, ये मन का धर्म है, इच्छा भी सुख भी दुख भी, और मन आत्मा नहीं है। मन को आप कई दिन से सत्संग करते हैं, मालूम है आपको कि मन ये पंचभूतों का कार्य है, जो सूक्ष्म पांच भूत हैं उनके सम्मिलित सत्वगुण से अंतकरण बना है। तो ये अपंचकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण का परिणाम है, कार्य है मन, इसलिए इसे भौतिक ही माना जाएगा। और तो महाभूत भी जब क्षेत्र हैं, मन भी क्षेत्र है, और मन रूपी क्षेत्र का ये इच्छा द्वेष सुख दुख धर्म है, तो दुख मन में है, मन का धर्म है। लेकिन उस मन के सन्निधि में यदि आत्मा रहती है, आत्मा मन का सानिध्य आत्मा को मिलता है अविद्या से, तो फिर मन में जो भी धर्म है वो आत्मा में भासते हैं। जैसे सफेद स्फटिक के सन्निधि में यदि लाल पुष्प आया तो स्फटिक लाल भासता है, पीला पुष्प रखो तो पीला भासता है, नीला रखो तो नीला भासेगा। यानी जिस रंग की वस्तु आप सफेद स्फटिक के पास में रखोगे उसी रंग से वह रंगीला दिखता है स्फटिक। वस्तुतः वो सब रंग उसमें नहीं है। ऐसे इच्छा रूपी धर्म से युक्त अंतकरण हो जाए तो आत्मा भी इच्छावान प्रतीत होगा। जो अज्ञान से अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अपने आप को मन के साथ तादात्म्य करके मन रूप ही मान रहा है, अनात्मा है मन, और उस अनात्मा मन को ही आत्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से मैं समझ लेता है उसमें तादात्म्य करके, तो फिर क्या हो जाता है कि मन के धर्मों से युक्त वो भासता है, लेकिन मन में वो मन अनात्मा है, और उस अनात्मा रूपी मन के सुख दुख इच्छा राग द्वेष आदि सब धर्म है, वो भास रहे हैं आत्मा में, ये अध्यास है। और इस प्रकार के अध्यास का वर्णन करके, और यदि आप मन से अपना तादात्म्य हटा दो, मन से अलग हो जाए, तो क्या होगा कि मन के धर्मों से जैसे स्फटिक को रंगीले पुष्पों के पास से हटा दो, अकेले में रख दो, तो वो फिर उसका जो स्वरूप है उसी स्वरूप से भासेगा, उसमें कोई भी दूसरा रंग नहीं भासेगा। ऐसे आप विवेक से क्या करो कि अपने स्थूल शरीर से भी और सूक्ष्म शरीर से भी और कारण शरीर से भी आत्मा को अलग कर दो। और ये अलग किससे किया जाएगा? चावल में मिले हुए कंकड़ों को तो आप आंख से देख करके हाथ से अलग निकाल सकते हैं, लेकिन आत्मा अनात्मा का जो सम्मिश्रण हुआ है, ये जो एक दूसरे के साथ मिले हैं, इनको कैसे निकालेंगे? तो इनको शास्त्र से एक नेत्र प्राप्त करना है, शास्त्र नेत्र, ज्ञान नेत्र जिसको कहा जाता है, ज्ञान दृष्टि, विवेक दृष्टि, और विवेक से आप इसे अलग कर सकते हैं। आत्मा अनात्मा का विवेक करना है, और जब तीनों शरीरों से अलग करके आप अपने आप को देखो तो आप विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यह श्रुति जो आपका स्वरूप बता रही है, आत्मा का स्वरूप बता रही है। विज्ञान का अर्थ है शुद्ध ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान और दुख रहित नित्य आनंद, यो वै भूमा तत् सुखम श्रुति जिसको कह रही है, वह नित्य सुख कहो या आनंद कहो, इसी रूप में आपको अपना भान होगा। तो इसी के लिए तो उस अनात्मा से अलग जो शुद्ध आत्म स्वरूप है, विज्ञान विशुद्ध ज्ञान और परम आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उसका आत्म रूप से ज्ञान कराने के लिए ही सारी उपनिषद है। इसी के लिए उपनिषदों का भाष्यकार भगवान कहते हैं प्रारंभ है। ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य में ये वाक्य लिखते हैं कि अस्य अनर्थ हेतो हो प्राणाय आत्म एकत्व प्रतिपत्तये च सर्वे वेदांता आरभन्ते। वेदांत कहते हैं उपनिषदों को, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम।